ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, कर्मातीत बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो ये लक्ष्य हमें सदैव याद रहे कि मुझे क्या बनना है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं और मुझे बाप समान बनना है। तो बाबा की जो विशेषता है ये हमारी बुद्धि में होनी चाहिए कि ब्रह्मा बाबा में क्या विशेषता थी जिस अनुसार हमको बनना है। सबसे पहला, बाबा ज्ञानी तो आत्मा थे। ज्ञान सिर्फ सुनाते नहीं थे, जीवन में लाया था। पढ़ना और पढ़ाना ये पाठ पक्का था। पढ़ाना एक भी दिन बाबा ने मिस नहीं किया। चाहे बीमार भी थे, क्या करते थे? नोट्स लिख कर देते थे। हॉस्पिटल में थे तो फोन पर पॉइंट्स देते थे। फिर वो बहन जो सुनती थी वो उसको विस्तार पूर्वक क्लास में समझाती थी। जब कश्मीर गए एक मास परिवार के साथ, तो रोज पत्र लिख रहे थे और उसमें लिखते थे कि फलानी बहन इसको क्लास में विस्तार पूर्वक सुनावे। और ज्यादातर मम्मा भी सुनाती थी, तो फिर मम्मा की मुरली बहुत मशहूर हो गई। और ड्रामा पर अडोल, साक्षी दृष्टा, जो भी सीन हो रही थी साक्षी होकर देखते थे। और अडोल एक रस, क्योंकि यज्ञ के ऊपर कई मुसीबतें आई, कईयों ने सामना किया, एंटी पार्टी ने, समझो वहां धरना लगाया, तो अपनी बहनें भी जो पक्की थी वो जो कुमारियां थी बाहर थी अडोल रही और वहीं खड़ी रही, खाया नहीं पिया नहीं। तो समझो उनको पढ़ाई का शौक था और जब भी बातचीत करते थे ज्ञान के पॉइंट सुनाते थे। हम लोग कभी भी जाते थे, चाहे बाबा के कमरे में जाते थे, चाहे आंगन में मिलते थे, ज्ञान के पॉइंट सुनाना। तो सारा दिन ज्ञान मंथन करते रहते थे, क्योंकि हम लोग है, हमको मालूम था 5:30 बाबा फ्री होकर विष्णु के पोज में अपने वरंडा में लेटते थे। हम लोग जाते थे, कुछ न कुछ ज्ञान की पॉइंट सुनाता था। और शुरू में भी आपको मालूम है मुरली के बाद फौरन दादियां जाती थी चैम्बर में, और दादियां भी मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करके बाबा को कहती थी, बाबा आज आपने ये बहुत सुना, बहुत अच्छी सुनाए, बहुत अच्छी सुनाए आदि आदि। तो इस रीत से उनको ज्ञानी तो आत्मा भी प्रिय थी ज्यादा। दूसरा, हमारे चारों सब्जेक्ट में जैसे एक्सपर्ट योगयुक्त अमृत वेला करना, मनन मंथन करना मुरली के पहले, और फिर मुरली सुनाना, और सारा दिन या तो ज्ञान युक्त या तो योग युक्त या तो पर्सनली मिलना, तो वो भी नेचुरली है, पर्सनली मिलने के टाइम भी तो उनको योग युक्त रहना पड़े, तभी तो एक्यूरेट जवाब दे सकते थे। तो इतना योग युक्त था, तो नेचुरली है योग युक्त होने के कारण क्या था, परखने की शक्ति ज्यादा थी। कोई भी आता था परख लेता था कि ये व्यक्ति क्या है, कैसी है, उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, मालूम पड़ जाता था। उसके मन में क्या है वो भी समझ जाते थे, क्योंकि कई बार बहनें क्या होती थी, वो प्रभावित हो जाती है ना, अपने स्टूडेंट सर्विसेबल होते हैं ना, शोई होते हैं, कई स्टूडेंट बहुत शोई होते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये VIP की सेवा कर सकता हूँ, शो करते हैं, करेंगे नहीं करेंगे परंतु शो बहुत करेंगे। तो बाबा उनको परख लेते थे, वो बहनें उसकी महिमा करेंगी बाबा को, और बाबा उनके जाने के बाद, उस व्यक्ति के, वो बहन के जाने के बाद कहेगा चलने वाला नहीं है, मालूम पड़ जाता था। परंतु फिर भी प्यार की दृष्टि रखते थे, मालूम होता था, फिर भी बाबा कहते हैं मैं प्यार देता हूं ताकि शायद उठ भी जाए, तो इसलिए उनकी प्यार की दृष्टि तो रहती थी। तो सभी समझते थे बाबा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, सब समझते थे बहुत प्यार करते हैं, चाहे थर्ड क्लास स्टूडेंट भी होगा ना, बाबा का प्यार होगा उनके साथ, और बाबा प्यार से उनको दुलार करते थे। तो योग युक्त तीसरा उनकी धारणा नेचुरली है कि जैसे बाबा कहते थे भाई भाई की दृष्टि रखो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अलौकिक दृष्टि रहे, न्यारा और प्यारा रहे। तो गृहस्थ में तो रहते ही थे, सारा परिवार साथ में था, परंतु उन्होंने भी अलौकिक दृष्टि करवाई, उनकी लौकिक पत्नी जसोदा को भी उसको बाबा कहना पड़ा, इतना परिवर्तन कराया ना, क्योंकि आज पति को बाप कहना वो कोई सहज नहीं है, और वो भी उस जमाने में जहां हम पति का भी नाम नहीं लेते थे माताएं, तो ऐसी उनको दृष्टि सिखाई। और जो भी समझो, चाहे निर्मल शांता दादी थी, चाहे प्रकाशमणि दादी थी, हरेक के लिए इक्वल प्यार, कोई नहीं समझ सकता था कि ये अपने लौकिक बच्चों को विशेष दृष्टि से देखता है या ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, नहीं। जब लौकिक बेटा भी नारायण ने जब यज्ञ छोड़ा तो बाबा ने क्या किया मालूम है, 5 रुपया दिया, यहां से आप उसे अहमदाबाद की टिकट का, फिर तुम अपना भविष्य बना लो। क्योंकि जब समर्पित हुए तब उन्होंने बच्चों से पूछ लिया था कि ये सब मैं यज्ञ में दे दूं, बच्चों ने कहा दे दो, तो जब बच्चे गए, कहा कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओ। बाकी जिन्होंने समझो अपना धन दौलत गहने अलंकार आदि लाए थे ना, कईयों ने वापस मांगा कि बाबा हम ये लाए, 14 साल रहे, खाया पिया, सारी पालना ली, और 14 साल के बाद कहते बाबा हम जाते हैं, हम जो लाए थे लाओ। और बाबा की परखने की शक्ति ऐसी थी कि जब बैगरी पाठ था, जाना कब शुरू हुआ, जब बैगरी पाठ हुआ, जब उनको खाना पीना सब अच्छा मिलता था ना, शुरू में तो क्या था, बादाम पिस्ते की सब मिठाइयां, रेशमी कपड़ा। और जब बैगरी पाठ हुई तो बाजर का डोडा और छाछ। तो कईयों ने कहा ये तो हमारी तबीयत को सूट नहीं होता है, तो भागंती हो गए और मांगा वापस। तो बेकरी पार्ट में औरों का बाबा ने क्या किया, क्योंकि सब बेचना पड़ा ना, इतने तक कि ग्रामोफोन की रिकॉर्ड भी बेचनी पड़ी, परंतु उन्होंने का नहीं बेचा था। तो जब उन्होंने कहा मुझे दो, तो बाबा ने फौरन मम्मा को कहा दे दो उनको, लेके चले गए, परंतु अपने लौकिक बेटे को नहीं दिया कुछ। मतलब इतनी उनकी अलौकिक दृष्टि और नष्टो मोह थे, जैसे हम बाबा कहते हैं ना, न्यारा और प्यारा रहो, लौकिक में रहते भी नष्टो मोहा बनो, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे। और कोई भी परिस्थिति आई अडोल रहे, और जरा भी उनको डर नहीं रहा, निडर थे। क्योंकि क्या हुआ आपको मालूम होगा, वो दिल्ली में मेजर के घर में थे, जिनके घर में रहते थे उन्होंने बाबा की गोद में शरीर छोड़ा। तो ब्राह्मणों को तो चिंता हो गई कि जिसके घर में शरीर छोड़ा उसने छोड़ दिया, सब कहेंगे कि इसने मार दिया। तो इसलिए फिर बाबा गुपचुप वहां से निकल गए, परंतु डरे नहीं। जब सामना हुआ बाबा नहीं डरे। कईयों ने कहा कि आप इन्हों को पवित्रता की शिक्षा नहीं दो। जब पति लोग आए ना वापस विदेश से, तो बाबा के पास आकर लड़े कि बाबा आप उसको क्यों शिक्षा देते हो ब्रह्मचारी रहने की। बाबा ने कहा मैं नहीं देता हूं, ये तो ऊपर वाला शिक्षा देता है। तो बाबा अपने वचन पर अड़ग रहे, जरा भी दोलायमान न हुए, और निश्चय पक्का था। बेगरी पाठ में जब खाना नहीं था, गेहूं नहीं था, रोटी नहीं थी, 10-11 बजे भंडारी ने पहले तो यीशु से, दादी से पूछा कि गेहूं चाहिए, आटा नहीं है। यीशु दादी कहे कुछ भंडारे में है ही नहीं। तो गई बाबा के पास, बाबा कहे कोई बात नहीं ठहरो, पोस्ट आई, पैसा आया, टाइम पर खाना मिला। तो निश्चय था कि बाबा खिलाएंगे। और वैसे भी आप देखते हैं कि बेगरी पार्ट में उन्होंने क्या किया, सवेरे तो जंगलों में ले जाते थे, घुमा भी लेते थे और बेरी काट भी लेते थे, सबको खिला देते थे, उनका नाश्ता हो गया। तो इसी रीत से निश्चय में भी ये था, तो निश्चय के साथ नशा भी था कि कल मैं जाकर कृष्ण बनूंगा, जभी भी समझो मुरली भी चलाते थे, लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का पिक्चर होता था हिस्ट्री हॉल में, कल जाकर मैं ये बनूंगा। और जब लच्छू दादी उनकी ब्राह्मणी थी, कपड़े देती थी, तो कहता था कि ये कल मैं ये वस्त्र पहनूंगा नारायण का, ये वस्त्र हमारा कल होगा नशा। तो निरंकारी भी इतने थे, एक तरफ नशा था तो दूसरे तरफ निरंकारी थे, बिल्कुल अहंकार नहीं। इतना समझो पोजीशन थी, कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये मेरी गद्दी है, मेरी गद्दी पर कोई नहीं बैठे, बाबा की गद्दी पर भी बहनें बैठकर क्लास कराती थी, तो उनकी गद्दी पर ये बैठते थे और हम लोग मिलते भी थे ना बाबा के कमरे में। बाबा इतने 2-3 इंच की गद्दी पर बैठते थे, हम सामने बैठते थे, तो ऐसे नहीं कि ऊंचे आसन पर बैठो, नहीं, जैसे सन्यासी होते हैं ना उनका आसन चांदी का, पहले गद्दी पर जाता था, पीछे वो आते हैं या उनके साथ साथ उसके फॉलोअर्स की कितनी गाड़ियां होती हैं। तो आजकल तो नहीं, कई रजनीश की कितने गाड़ियां थी सब देखो तो, इसकी भी राम रहीम की कितनी गाड़ियां थी, एक समान के कोई पहचाने नहीं कि किस गाड़ी में ये गुरु बैठा है। जैसे प्रेसिडेंट है ना, उसकी भी एक समान 4-5 गाड़ी जाती है, किस गाड़ी में प्रेसिडेंट बैठा है अमेरिकन किसी को मालूम नहीं पड़े। तो बाबा के पास तो एक भी गाड़ी भी नहीं थी ना उस दिनों में, परंतु कोई जब भी ट्रेन पर आते थे ऐसे कहते थे सबको नहीं आना है, क्राउड को नहीं इकट्ठा होना है, मैं गुप्त हूँ, मुझे गुप्त रहने दो और हार तोरा नहीं लाओ, शो नहीं, मैं तो देवता नहीं हूं इसलिए हार नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इतना निरअहंकारी, वस्त्र भी वही पहने रखे जो लौकिक में पहनते थे, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आकर फिर कोई बपका करे, इतना शो करें। और अथक सेवाधारी, सारा दिन सवेरे 4 बजे से उठते थे, सारा दिन सेवा, कभी कभी जरा लच्छू दादी देखती थी ये थक गए हैं तो पूछती थी कि बाबा अभी पर्सनल मीटिंग बंद करें थोड़ा टाइम, बाबा कह दाना चलो चूस कर फ्रेश हो जाते थे 2 मिनट में। तो इसलिए सेवा भी अथक, तो उमंग उत्साह इतना सेवा का। आप देखते हैं मुरली में कितना उमंग उल्लास से कहते हैं, पोस्टर छपाओ, मंदिरों में जाओ, श्मशान में जाओ, गीता पाठी के पास जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, ट्रस्टियों की सेवा करो। तो सेवा के लिए भी प्लान बनाते रहते थे और जब प्रदर्शनी निकली ना तो उसके ऊपर भी मंथन करते थे, क्या करना है, कैसे समझाना है, पहला चित्र कौन सा होना चाहिए। जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है चक्कर आगे नहीं चलो, और पहला चित्र ये रखो कि 5000 वर्ष पहले भी आप यहाँ आए थे। तो इसी रीत से मनन मंथन चलता रहता था और डायरेक्शन देते रहते थे, छोटे छोटे अक्षर नहीं लिखो चित्रों पर, बड़े बड़े अक्षर लिखो, बड़े बड़े वो बनाकर बोर्ड बना के स्टेशन पर रखो, जहाँ पब्लिक आती है वहां रखो, दिल्ली में बोर्ड लगाओ, आदि आदि करते रहते थे। तो बाबा के पास जैसे कि ऑपोजिट क्वालिटी के बैलेंस था, न्यारा भी था प्यारा भी था, इकोनॉमिक भी करते थे। बाबा हमेशा कहते हैं ना, कम खर्च वाला नशीन। और वो क्या करते थे कि जो भी समझो खरीदारी करनी होती थी ना, तो ब्राह्मणों को तैयार किया था, टॉप पर जाओ, मैनेजर के पास जाओ, मालिक के पास जाओ, उनकी सेवा करो, फ्री कराओ या कॉस्ट प्राइस में कराओ। तो दादी भी कई बार अपना एग्जाम्पल देती है ना, कैसे उसने जाकर प्रिंटिंग कराया फ्री में आदि आदि। तो बाबा खुश होते थे कि ये देखो बच्चे, क्योंकि यज्ञ में 200 300 400 लोग रहते थे, और उनका कपड़ा जूते सारा टॉयलेटरी टूथपेस्ट ब्रश ये वो सब लाना पड़ता है ना, तो नेचुरली है होलसेल में मालिक की सेवा करके लाते थे कम प्राइस में। और उनकी स्टेज इकोनॉमी के साथ साथ उदार भी थे, मतलब जब मैं पहली बार यहाँ आई मधुबन में, तो हमको पूछा कितने हैं घर में, सबके लिए सौगात दी। और रमेश भाई आते थे, आपको मालूम होगा, मुंह में सारी इतनी टोलियां डाल देते थे मुट्ठी भर के, तो समझो। और हम जब आते हैं थे, अभी भी देखो यज्ञ में विदेशी आते हैं तो उनके लिए विशेष चिप्स बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं। दादी जी भी पूछती थी क्या क्या खाना है, तो कहेंगे हमको समोसा खाना है, विदेशियों को पसंद पड़ता है समोसा, गुलाब जामुन, आइसक्रीम। तो दादी भी बनवाती थी, तो बाबा भी ऐसे करते थे ना, साउथ इंडियन आएंगे तो ऐसा खाना बनता है, नॉर्थ इंडियन आते तो ऐसा खाना बनता है। तो इसी रीत से बाबा उदार थे, सभी को सौगात बोलती है आज तक, चाहे हम यज्ञ में कुछ डाले ना डाले पर सौगात जरूर मिलती है। वो नहीं देखते हैं कि आपने यज्ञ में कितना डाला। अभी भी मुन्नी बहन भी ऐसे करती है, क्योंकि जब समर्पण होता है ना, हर एक को एक समान बैग बनाकर देती है, वो ये नहीं कहती है कि आपने कितना डाला है, हर एक को सोने का बेज है, हर एक को जो कपड़ा है ये वो बैग भर के देती है। तो वो ट्रेडिशन ब्रह्मा बाबा से चल दिया ही कि सबको जो भी चाहिए देते थे, परंतु ये कि अपने लौकिक का उनको बहुत पहले से लेसन पक्का कराया, लौकिक ने जो दिया है वो नहीं पहनो, नहीं तो लौकिक की याद आएंगी। यज्ञ से मिलता है लो, और यज्ञ सबको देता रहता है साल भर, जो समर्पित है उनको, तो साल में कपड़े, गर्म कपड़े, जूते सब मिलता रहता है। तो इसलिए बाबा ने ऐसे किया, और इतने तक खुद के लिए भी करते थे। यदि कोई माता मोह में आकर कोई स्वेटर वगैरह बना कर लेती थी उसको खुश करने के लिए दो मिनट पहन लेते थे, परंतु कहते थे इसका मुख है, मुंह के वाइब्रेशन है, हम नहीं लेंगे। खाना पीना में भी ख्याल करते थे कि थोड़ा ले लेते थे, क्योंकि डायबिटीज भी था तो माताएं तो कई बार मीठा बना कर ले आती थी, थोड़ा टेस्ट करते थे, बस ज्यादा नहीं। तो उनकी जो स्थिति थी वो गंभीर भी थे तो रमणीक भी थे। जैसे मुरली में भी आप देखते हैं कई बार धर्मराज का रूप भी ले लेते हैं, गंभीर भी थे पर रमणीक भी थे। क्या करते थे कि ब्रह्मा बाबा और लच्छू क्या करे, अप्रैल की फर्स्ट तारीख है ना, तो पकोड़े कैसे बनाएंगे, अंदर मूंगफली के छिलके डाल के या रुई डालकर पकोड़े बनाकर हम लोग जाते थे ना। अभी मोटर में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं और लच्छू दादी दौड़ती दौड़ती आएंगी, बाबा ने आपके लिए पकोड़े भेजे हैं, और पकोड़े खोलो तो रुई निकले। और दादी प्रकाशमणि बंबई में थी, और दादी प्रकाशमणि है उस समय ज्यादा सेवा नहीं चलती थी, तो बाबा ने पत्र में एक दिन मरी हुई मक्खी भेजी कि तुम बंबई में बैठी बैठी मक्खी मारती है क्या, सेवा क्यों नहीं होती है। तो रमणी मजाक भी उड़ाते थे। परंतु उन्होंने सर्वस्व अपना समर्पण किया, क्यों नंबर वन आए, सब सब्जेक्ट में उन्होंने प्रवीणता हासिल की थी, तो जो भी उनका था सब समर्पण कर दिया। ट्रस्टी बहनों को बनाया, माताओं को बनाया, तो इसलिए फिर अपने बेटों को कुछ नहीं दिया। योग युक्त, राजयुक्त, युक्ति युक्त, क्या हुआ, एक माता आई बाबा को मिलने और बाबा को कहती है कि बाबा मेरी बेटी 17 साल की है, उसको फिल्म में जाना पड़ता है, उसको शौक है जाने का, बाबा उसको अकेली को मैं कैसे भेजूं, मैं जाऊं। बाबा कह भले जाओ। तो वो जाने के बाद दादी ने पूछा, बाबा आपने सिनेमा की कैसे छुट्टी दी उसको, तो बाबा कहता है मुट्ठी, जैसे सिंधी में है ना मीठी को मुट्ठी कहते हैं, मुट्ठी मैं छुट्टी नहीं देता तो भी जाती, और मेरे ना कहने पर जाती तो उसके ऊपर और भी पाप चढ़ता, इसलिए मैंने छुट्टी दे दी। तो इसी रीत से युक्ति युक्त उनको जवाब दिया ताकि उसके ऊपर पाप का बोझा ज्यादा ना पड़े। मतलब बाबा हमेशा ये भी है, जो सर्विस थे ना, सर्विस करने जाते थे तो नहीं, बाबा रमेश भाई अपना कई बार मिसाल भी देते हैं कि वो हैंगिंग गार्डन में जाते थे, बाबा को रास्ते में ले जाते थे, क्योंकि क्लास होता था चर्च गेट पर और रास्ते में हैंगिंग गार्डन आता था, तो फिर कहेंगे यहाँ जाओ, उसके पास जाओ, उसको सेवा करो, उसके पास सेवा करो, उसके पैम्पलेट दो, और फिर पूछते थे उसने क्या बोला, आपने क्या जवाब दिया आदि आदि, तो फिर उनको डायरेक्शन भी देते थे। और एक बारी यहाँ माउंट आबू में उषा बहन रमेश भाई की युगल है, वो किसी वीआईपी को मिलने गई, तो नेचुरली है वीआईपी ने कुछ चाय फल ऑफर किया, तो उषा बहन ने तो लिया नहीं, परंतु आकर थोड़ी अपनी बड़ाई की बाबा के पास के बाबा उसने तो फल दिया पर मैंने खाया नहीं। बाबा कहे नहीं खाना चाहिए, हाँ क्योंकि बड़े आदमियों का थोड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, मतलब सर्विस के लिए ये भी ध्यान रखते थे क्या सर्विस की। एक बारी दादी जान की है, वो गई थी एक रानी को मिलने और रानी बहुत भगत थी, सवेरे 4 बजे उठकर भक्ति करती थी। तो दादी ने संदेश तो दिया, फिर दूसरे दिन बाबा पूछते हैं अमृत वेले के बाद तुमने अमृत वेले उसको सकास दी, क्योंकि सेवा करके सिर्फ एक बारी उनको छोड़ नहीं देना है, फिर उनको योगदान देना है, क्योंकि वो अमृत वेले उठकर भक्ति करती है उसको योगदान दो। तो इसी रीत से सर्विस का उनको बहुत ख्याल रहता था। और बाबा है वो हमेशा अव्यक्त फरिश्ते स्थिति में रहते थे, क्योंकि जैसे चलते चलते भी एकदम जैसे अव्यक्त रहते थे। और एक बहन अपना अनुभव सुनाती थी कि उसने चलते चलते जैसे ने बाबा का हाथ पकड़ कर चलती थी तो कहा इतना जैसे करंट आता था बाबा के हाथ से और बाबा का हाथ इतना मुलायम सॉफ्ट था। तो इस रीत से देही अभिमानी दृष्टि और बेहद की दृष्टि सब मेरे बच्चे हैं, तो सबको बच्चे बच्चे कहते थे, चाहे कोई बच्ची या बच्चे, चाहे लेबरर थे यहाँ के मजदूर बच्चे, चाहे मिनिस्टर था तो भी बाबा कहेंगे बच्चे, और चिड़िया उसको भी बच्ची कहते थे, क्योंकि वो झोपड़ी में गर्मी में झोपड़ी में उनका टाइम फिक्स होता था ना, पोस्ट लिख के 10:30 फ्री हो जाते थे, जाकर झोपड़ी में बैठ जाते थे। तो एक चिड़िया रोज आती थी तो बाबा लच्छू को कहे, लच्छू बच्ची लच्छू इस बच्ची को टोली दो, हाँ तो चिड़िया को भी रोज टोली मिलती थी रोज आती रही। तो बाबा की दृष्टि हरेक के प्रति प्रेम की और बच्चे बच्ची की, सब मेरे बच्चे हैं, नेचुरली इतनी बेहद की दृष्टि बेहद की सेवा। तो ये उन्होंने ये था, हद नहीं था, मेरापन नहीं, सब मेरे हैं लेकिन कोई मेरा नहीं। जैसे कहती है कहते हैं ना याद करो न विसरो। तो इसी रीत से बाबा का हमेशा रहता था। तो ऐसे बाप समान बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, एक तो आपको जानना चाहिए बाबा क्या था, उनका बोलना चालना कितनी रॉयल्टी थी, खाना पीना। तो जैसे रॉयल खाना क्या होता है, थोड़ा खाना। आजकल आप दादियों का उम्र भी है एक तो, परंतु खाना दादी का कितना होगा, एक चपाती इतने खाएंगी, चावल इतने खाएंगे, सब्जी इतने खाएंगे। तो बाबा का भी ऐसे था रॉयल, बाबा की याद में खाना, जैसे बाबा मुझे खिला रहा है वो ध्यान रहता था। तो खाना रॉयल, चलना रॉयल, दृष्टि विशाल और बेहद की। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है कि लक्ष्य भूलना नहीं है पहला तो कि ग्रस्त में रहकर हम ऐसे नहीं समझे आप तो ग्रस्त ही है खाना पीना पकाना घर चलाना काम में बिजी हो गए नहीं हमको बाप समान बनना है ये घर ग्रस्त में रह के भी याद रहे अमृत वेला पावरफुल मिस नहीं करे मम्मा बाबा ने मम्मा भी कभी अमृत वेला मिस नहीं करती थी चाहे 12 बजे भी सोएंगी तो भी 2:30-3 बजे उठ जाती थी और ब्रह्मा बाबा भी अमृत वेला हमेशा दादी जान की भी अमृत वेला करेंगी पीछे भले सो जाएंगी। दूसरा हमको पुरुषार्थ में ढीला नहीं रहना है तीव्र पुरुषार्थ करना है क्योंकि मालूम है समय थोड़ा है तो समय थोड़ा है तो नेचुरली है स्पेशली जितना लेट आए हैं उतना हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना है क्योंकि कई बार क्या है हम अलबेले हो जाते हैं चलो आज थके हैं अमृत वेला नहीं करेंगे अच्छा चलो आज बिजी है मुरली नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे ये नहीं जो हमारा नियम है हमें ठीक पालन करना है तो पुरुषार्थ में तीव्रता हो उड़ती कला हो उड़ती कला कब रहेंगी जब कोई अटैचमेंट ना हो यदि कोई भी बात हमें नीचे खींचती है मोह है चाहे देह में संबंधियों में और कोई अपने वस्तु में प्रॉपर्टी में मोह है हम उड़ नहीं सकेंगे इसलिए बेहद का वैराग्य हो फॉलो मदर फादर दूसरों को नहीं देखो ये 20 साल में गुस्सा करता है मैं भी करता हूं क्या है नहीं मुझे मम्मा बाबा को फॉलो करना है उनको देखना है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई ये पाठ पक्का हो अपने संकल्प बोल कर्म पर चेक करते रहें अटेंशन भी रखें और चेक करते रहे कि ये बाप समान है इस परिस्थिति में बाबा ऐसे करते बोल मीठा और जो बाबा कहते हैं ना धीरे बोलो मीठा बोलो और एसेंसफुल हो जब विस्तार करना है विस्तार करो जब एसेंस में बोलना है एसेंस में हो और रात को अपना चार्ट देखना है यज्ञ में शुरू में आपने देखा होगा रोज चार्ट देखते थे मम्मा बाबा सबका चार्ट देखते थे किसने किसको दुख दिया और सबका ठीक रहा या नहीं खुद भी देखता था कि हमारे नौकर कर्म इंद्रिया हमारे वश में रहे या नहीं तो इसी रीत से हमें अपना चार्ट भी देखना है ताकि हम आगे बढ़ सके तो इसलिए हम जो बाबा कहते हैं समय थोड़ा है अपने को हमेशा सावधान रहना है समय शक्ति धन वचन व्यर्थ नहीं गंवाना सबको ठीक रीति से यूज करना है तो क्या होगा कि हम अपनी अवस्था को पा सकेंगे। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में था।